हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अर्श बेटा, आप ठीक हैं? अर्श उसका सवाल सुनकर बिलख बिलख कर रो पड़ा और वापस उसके सीने में अपना सर छुपाते हुए बोला,
पापा, मुझे जहाँ अच्छा नहीं लगा वो बैंट अंकल बेबी तो बुआ से छिनकर जहाँ ले आए। वो आंटी बेबी को छोड़ नहीं रही थी। बेबी रो रहा था कि पापा मम्मा के पास जाना है, बेबी को जहाँ नहीं लेना पापा। बेबी को बहुत डर लग गया था, बेबी तो घर जाना है। बेबी ने मम्मा पापा को बहुत साला मिच किया, बेबी तो मम्मा के पास जाना है।
अर्श की बातों और आंसुओं से साफ जाहिर था कि उसे एक दिन में बेचारा कितना तड़पा था अपने मम्मी पापा के लिए। अनजान जगह, अनजान लोगों के बीच कितना डर गया था वो। आयुष्मान ने कस के उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, पापा आ गए हैं बेटा, अब पापा किसी को आपको हाथ भी नहीं लगाने देंगे। पापा आपको घर लेकर चलेंगे, घर पर मम्मा आपका इंतजार कर रही है। चुप हो जाओ बेटा, अब पापा हैं आपके पास। आयुष्मान के समझाने पर अर्श कुछ शांत जरूर हुआ, पर वो आयुष्मान से अलग होने को तैयार नहीं था। आयुष्मान ने भी उसे खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की। आयुष्मान के मन में इस वक्त ढेरों सवाल चल रहे थे, पर इस वक्त उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी अपने बेटे को संभालना था। वो अर्श को अपने सीने से लगाए प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता रहा। पता नहीं अर्श कल से सोया भी था या नहीं और कितना रोया था। उस एक ही दिन में उसका चेहरा एकदम उतर गया था। कुछ ही देर में वो आयुष्मान के कंधे पर सर रखे सो गया। उनसे कुछ कदमों की दूरी पर खड़ा प्रेम खामोशी से सब देख रहा था। हमेशा की तरह यहां भी पुलिस देर से पहुंची। अर्श को देखकर आयुष्मान के पास पहुंचा इंस्पेक्टर सीधे प्रेम को गिरफ्तार करने पहुंचा, पर बीच में ही आयुष्मान ने उन्हें रोक दिया। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, इससे पहले कि आप इसे गिरफ्तार करें, मुझे इससे अकेले में कुछ बात करनी है। इंस्पेक्टर ने उसकी बात सुनकर सहमति में सर हिला दिया। आयुष्मान इंस्पेक्टर के पास आया, फिर अर्श की तरफ इशारा करते हुए बोला, आप थोड़ी देर के लिए मेरे बेटे को पकड़ लेंगे? इंस्पेक्टर ने तुरंत ही हामी भरी, पर नींद में भी अर्श ने आयुष्मान की शर्ट को कसके पकड़ा हुआ था। शायद उसे डर था कि कोई उसे आयुष्मान से दूर ना कर दे। वो आयुष्मान को नींद में भी छोड़ने को तैयार नहीं था। ज्यादा कोशिश करने पर उसकी कच्ची नींद खुल गई और उसने फिर से रोना शुरू कर दिया। आयुष्मान ने प्यार से उसके सर को सहलाला और समझाते हुए बोला, बेटा आप थोड़ी देर के लिए पुलिस अंकल के पास रुकिए, पापा अभी आते हैं।
नो पापा, बेबी आपके छात लहेगा, बैड अंकल बेबी तो ले जाएंगे।
नन्हे अर्श के मन में डर बैठ चुका था। आयुष्मान ने उसे बहुत समझाया, तब कहीं जाकर अर्श इंस्पेक्टर के पास गया और आयुष्मान प्रेम के साथ अंदर चला आया। क्या हुआ है वर्षा को? वो अर्श को देव कहकर क्यों पुकार रही थी? आयुष्मान ने बिना बात को घुमाए सीधे ही उससे सवाल कर लिया। प्रेम की आंखों के सामने कुछ दृश्य घूमने लगे और दर्द की रेखा उसके चेहरे पर पसरने लगी। उसने गहरी सांस छोड़ी और कहना शुरू किया, देव मेरा बेटा था, मेरा और वर्षा का। हमें 2 महीने पहले पता चला कि उसके ब्लड में इन्फेक्शन है। उसका इलाज चल ही रहा था कि लगभग 1 महीने पहले वो एक दिन अचानक ही बेहोश हो गया। तब मैं ऑफिस में था, वर्षा काफी डर गई थी। उसके फोन करने पर मैं जल्दी से घर पहुंचा, पर जब तक देव को हॉस्पिटल लेकर गया वो दुनिया छोड़कर जा चुका था। वर्षा की जान बसती थी उसमें। देव के जाने का उसे गहरा सदमा लगा। वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उसे अभी भी लगता है कि देव जिंदा है। डॉक्टर साफ कह चुके हैं कि या तो किसी दूसरे बच्चे को देव बनाकर वर्षा के साथ रखा जाए या फिर उसे हकीकत पर विश्वास दिलाया जाए कि देव अब इस दुनिया में नहीं। मैंने बहुत कोशिश की उसे हकीकत से रूबरू करवाकर ये विश्वास दिलाने की कि देव अब इस दुनिया में नहीं, वो अब कभी लौटकर नहीं आ सकता। पर जब जब वर्षा को मैं ये बताता हूँ उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं और फिर नींद के इंजेक्शन के अलावा वो किसी तरीके से काबू में नहीं आती। वो हमेशा देव की ढूंढती है। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कुछ दिन पहले उसे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर वर्षा को देव नहीं लौटाया गया तो या तो वो पूरी तरह से पागल हो जाएगी या फिर वो भी मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। आयुष्मान बड़े ही ध्यान से प्रेम की बात सुनता रहा, साथ ही उसके दिमाग में और भी बहुत कुछ चल रहा था। प्रेम जैसे ही छुपाया, आयुष्मान ने रोषपूर्ण नजरों से उसे घूरते हुए कहना शुरू किया, प्रीति को छोड़ने के बाद तुमने एक बार ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो किस हाल में है। जन्म के वक्त तुमने अर्श को खून तक देने से इनकार कर दिया था। बीते 3 सालों में तुमने एक बार प्रीति या बच्चे की खबर तक लेने की कोशिश नहीं की। अपनी पत्नी अपने बेटे के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। पर जब तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़कर चला गया और पत्नी मानसिक बीमारी से पीड़ित हो गई तो तुम्हें अचानक अर्श की याद आ गई। तुम्हारा परिवार बिखर गया तो तुम्हारी नज़र मेरे परिवार पर पड़ गई। अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए तुमने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया। तू गंदा था, इतना तो जानता था मैं, पर मुझे नहीं पता था कि अपने स्वार्थ में अंधे होकर इतनी घटिया और गिरी हुई हरकत करोगे तू। आज मुझे खुद पे घिन आ रही है कि कभी मैंने तुझे अपना भाई माना था। तेरे जैसे घटिया, गिरा हुआ और स्वार्थी इंसान किसी का भाई और बाप तो क्या, इंसान तक कहलाने के लायक नहीं है। एक बार फिर आयुष्मान का गुस्सा उस पर हावी होने लगा था। आंखों के महीन रेशे खूनी रंग में रंग चुके थे और उन आंखों में प्रेम के लिए नफरत और घिन जैसे भाव नजर आ रहे थे। मुझे मेरा बेटा लौटा दे आयुष, वरना वर्षा कभी ठीक नहीं हो सकेगी, वो मर जाएगी। प्रेम ने आयुष्मान पर दबाव बनाना चाहा। वो अच्छा था तो उसकी अच्छाई का फायदा उठाना चाहा, पर आयुष्मान पर इसका रत्ती भर असर नहीं पड़ा। उसने बिना किसी भाव के दृढ़ता से कहा।